Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Manisha Panchakam, presented by Swami Sri Avadesh Chaitanya Ji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Bhagavad Bhaktijan Manisha Panchak ka uchcharan karte. जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तेषु स्फुटतरा या संविदुज्जृम्भते या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषु प्रोता जगत् साक्षिणी सैवाहं न च दृश्यवस्त्विति दृढ प्रज्ञापि यस्यास्ति चेत् चाण्डालोस्तु स तु देजोस्तु गुरुरे केशा मणीषा मम ब्रह्मैवाहमिदं जगच्च सकलं चिन्मात्रविस्तारितं सर्वं चैतदविद्यया त्रिगुणया शेषं मया कल्पितं यस्य दृढा मतिसुखतरे नित्ये परे निर्मले चाण्डालोस्तु स तु द्विजोस्तु गुरुरे येषा मणीषा मम सस्वन्नस्वरमेव वेश्वमखिलम् निश्चित्य वाचा गुरो नित्यं ब्रह्म निरन्तरं बिमृषता निर्व्याज शान्तात्मना भूतं भावि च दुष्कृतं प्रदहता संविन्मये पावके प्रारब्धाय समर्पितं स्ववपुरी तेषामणीषा मम यातीर्यं नरदेवताभिहमि त्यन्तस्फुटां गृह्यते यद्भासा हृदयाक्षदेहविषया भ्रान्तिष्वतो चेतना तां भाष्यै पीतार्कमण्डलनिभां स्फूर्तिं सदा भावयन् योगी निर्भृतमानसो हि गुरुरे तेषा मणीषा मम यत्सौख्यां बुधिलेशलेशत इमे शक्रादयो निर्वृता यच्चित्ते नितरां प्रशान्तकलने लब्ध्वा मुनिर्निर्भृत यस्मिन्नित्यसुधाम्बुधौ गलितधीर्
ब्राह्मैवना ब्रह्मवेत् यकश्चित् ससुरेन्द्रवन्दितपदो न्यूनम् मणिशामम् चाण्डालोऽस्तु स तु द्विजोऽस्तु गुरुरित्येषा मणिशामम।
भगवत्पादाचार्य शंकर अपना मनीषा यानी निश्चय प्रार्थना के रूप में भगवान शाम्ब सदाशिव के सामने प्रस्तुत करते हैं। भूमिका को स्मरण करना चाहिए। जन्म जन्मांतर की जो संस्कार है उस संस्कार के परवश होकर के जीव जीता है। अवचेतन मन में उस संस्कार जो है प्रबल होता है। अधिकतर समय उस संस्कार को हम ध्यान भी नहीं देते हैं, परंतु परिस्थिति परिवेश उपस्थित होने पर अचेतन भाव से ही वह संस्कार जो है प्रबल हो उठता है और अपना जो अस्तित्व है उसको प्रकट कर देते हैं। इसलिए भगवत भक्तजन जीवन में न जाने कितने बार इस संसार में आना पड़ा। केवल मनुष्य रूप से ही नहीं, क्या क्या जन्म लेना पड़ा, सब संस्कार इसमें है। इस संस्कारों को परिशोधन करना, संप्रोक्षण करना, संशोधन करना, यही है साधना। उस संस्कार को क्या है संस्कार वो पता नहीं है हम सबको, परंतु कहीं ना कहीं मन में उस संस्कार को अगर शोधन शुद्धि करने की इच्छा है तो जीवन भर सत्कर्म, सद आचरण, सद विचार, सद भाव, इस सब में अगर जीवन को बिताते हैं, लगाते हैं, तो जितने भी संस्कार है चाहे वो अशुभ क्यों ना हो, वो अशुभ संस्कार शुभ वासना, शुभ कर्म, शुभ भाव से दब जाता है, परिशोधन कर सकते हैं। इसीलिए भाष्यकार, ग्रंथकार, आचार्यों ने बारंबार सत्कर्म सद्भाव में रहना, सद विचारों को दिल में बैठाना। ऐसा जीवन में कोई भी आचरण नहीं होना चाहिए कि वो अशुभ संस्कार और दृढ़ होता जाए। इसीलिए प्रत्येक आचरण में, प्रत्येक चिंतन में, प्रत्येक भाव को आप देखें और सजग होकर के कि मन में न जाने कितने प्रकार के भाव है, उसमें अशुभ और शुभ दोनों हो सकता है, परंतु अशुभ को मिटाने के लिए शुभ वासना, शुभ कर्म, शुभ संस्कार, शुभ प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए तो ऋषि कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, भद्रम कर्णे भीष्णुयाम देवा। वो ऋषि की प्रार्थना है, जैसा लगता है वैदिक काल में वो प्रार्थना वो किए तो इस वर्तमान युग में हमारे लिए क्या करना चाहिए। भद्रम कर्णे भी शुणुयाम देवा भद्रम पश्चिमाक्षभिर्यजत्रा। कई बार हम चीज देखते हैं, हमें लगता है कि इसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं, संस्कार नहीं, इसका प्रभाव हमारे जीवन में कैसे पड़ सकता है। नारायण, यह मन यह अंतकरण ऐसा एक तत्व है, आप चाहे न चाहे अनवरत वो जो है प्रत्येक छवि को, प्रत्येक चित्र को, प्रत्येक विषय को जो ही आपके कांटेक्ट में आता है वो जो है स्नैप ले लेते हैं। आपको पता तक नहीं लगेगा कि कब वो क्लिक हो गया। और परिस्थिति आने पर जब आप एकांत होना चाहते हैं, मन को वश में करना चाहते हैं, मन को प्रभु चरणों में अर्पण करना चाहते हैं, मन के शुभ भावों को आप देखना चाहते हैं, तब वो अशुभ भाव, अशुभ दर्शन, अशुभ विचार, अशुभ जितने भी आपने संग्रह किया वो सब प्रबल हो करके आपके शुभ भाव को मिटाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। इसीलिए जब भी मन में आए कि अमुक कर्म करूं अगर वो सत है तो तुरंत उस पर उसको कर लेना चाहिए। सत कर्म में, सद्भाव में पोस्टपोन्ड की थ्योरी ठीक नहीं है। हम लोगों की चित्त की एक धारा है, जो शुभ है उसको हम ढकेलते रहते हैं, बाद में करूंगा। जो काम्य है, कामना प्रयुक्त है, जिसमें सामान्य सुख निहित है, श्रेय नहीं है, प्रेय है, उसके लिए हम अधिक प्रयत्न करते हैं और उसको कर लेते हैं। भगवत भक्तजन जो संस्कार शुभ चित्त को परिशोधन करने में सक्षम है उसको अधिक से अधिक आचरण करना चाहिए। और यही आद्य जगतगुरु शंकराचार्य जी अपने जो गौड़ ब्राह्मणत्व का जो अभिमान है, चूंकि इतने बड़े ज्ञानी महापुरुष है, सर्वशास्त्रविद है, फिर भी उनके जीवन में एक संस्कार, टीकाकार लिखते सैव संस्कार प्रबलतर। जीवन भर गुरु सन्निधि में रह करके विद्या अभ्यास करते हुए साधना के द्वारा एक स्थिति में पहुंचे हैं, फिर भी वो जो संस्कार वो अभी भी पीछा। तो ऐसा साधक, ऐसा मनोवृत्ति, मन की दशा तो अपनी नहीं है नारायण। तो जब हम कुछ कर्म करना चाहते, शुभ विचारों को लाना चाहते, तो वही अशुभ संस्कार जो है हमें भी बाधक के रूप में, प्रतिबंधक के रूप में उपस्थित हो जाता है। और उस संस्कार के परवश होकर के आचार्य अपना जो है रिएक्ट भी करते हैं। इसलिए मैं पहले दिन ही बताया कि आचार्य को एक सामान्य मनुष्य, मानव, किस प्रकार वो अति मानव देव भूमि तक पहुंच सकते हैं। मैनेज रैशनल एनिमल, रैशनलिटी एनिमिलिटी दोनों है नारायण। आप मनुष्यत्व तब अर्जन कर सकते हैं जब आप अपने विचारों को, भावों को संशोधन के द्वारा एक दिव्य सत्ता की ओर जा सकते हैं, तब आप मनुष्यत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए एनिमिलिटी को पूर्ण रूप से दूर करना कठिन है, असंभव सा है, दीर्घ प्रयत्न और वो विचार रैशनल, ये विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा संस्कार को थोड़ा सा शोधन करना है और तब जाकर के आपके अध्यात्म जीवन की शुरुआत हो सकती है। नहीं तो माला लेकर के बैठ सकते हैं, प्रभु के पास पहुंच भी सकते हैं, परंतु वो संस्कार अगर प्रबल है तो हम प्रभु के पास फिजिकली शरीर से तो उपस्थित हो सकते हैं, परंतु मेंटली उतना ही दूरी में मौजूद होते हैं। प्रभु के साथ नैकट्य मानसिक स्तर पर होना चाहिए, फिजिकल स्तर पर होकर के कुछ मिला नहीं, कुछ पाया नहीं, कुछ अनुभव नहीं हुआ। और वो अगर हम मेंटली मानसिक स्तर पर उनके निकट पहुंचते हैं तो हमारे जीवन को एक प्रकाश, एक तृप्ति, एक शांति दे सकते हैं। ठीक उसी प्रकार विचारों को, भावों को जब हम करते हैं, वो विचार करने से नहीं, वो विचार में अमल होना है, उतरना है, लाना है प्रयोग में, तब जाकर वो विचार आपके जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं। और आज जो जगतगुरु शंकराचार्य जी के जीवन में वो हम देखते हैं कि संस्कार के परवश होकर के एक ज्ञानी महापुरुष, चाहे अगर प्रत्यक्ष न भी माने, परोक्ष रूप से वो ज्ञान को प्राप्त किए और वो संस्कार को, ये जो वासना है, अशुभ संस्कार है, उसको दूर करने के लिए आदिदेव महादेव उपस्थित हुए हैं। भगवत भक्तजन, साधक के जीवन में ये बहुत ही एक अनोखा उपलब्धि है। जब वो साधना में तत्पर हो जाते हैं, उनके जीवन में अगर ऐसा कोई भी त्रुटि हो, आपके समर्पण, आपके आचरण, आपके डेडिकेशन के ऊपर निश्चय है कि प्रभु का आगमन, और वही आचार्य के जीवन में हम देखते हैं। भगवान विश्वनाथ ने विचार किया, सोचा कि ये संस्कार इनको बहुत दूर ले जा सकता है, इसीलिए वो स्वयं अंत्य वेश धारण करके, चांडाल रूप से उपस्थित हो करके उनके जो संस्कार है उसको दूर करने का प्रयत्न किया। तो क्या ये हमारे जीवन में नहीं संभव है, हो नहीं सकता है? बिल्कुल हो सकते नारायण। और वही संभव है जब आपके जीवन में इस प्रकार के समर्पण, इस प्रकार के सद आचरण, सद विचार आप कर सकते हैं। आचार्य ने अपने उस संस्कार के परवश उस चांडाल को हट जाओ करके भगाया, परंतु जब वो देखा कि ये चांडाल हटना तो दूर और जो है निकट आने लगा, तब वो घबराया और सामने एकदम निकट आकर के खड़े हो गए। मदमस्त घोर अघोर एक रूप है बाबा विश्वनाथ के, और उस रूप को आचार्य पहचान नहीं पाए। इसलिए भगवत भक्तजन ध्यान के द्वारा उन्होंने उस स्वरूप को, दिव्य स्वरूप को पहचाना। जब हम आचार्य की जीवनी को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, लगता है कि जीवन में ध्यान है, साधना है, सत्कर्म है, सद्भाव है, सद्विचार है, तब जाकर कि उन्होंने ध्यान में पारंगत होकर के उस दिव्य स्वरूप का अनुभव किया। परंतु जब इधर देखते हैं अपने पास, तो वो योग्यता भी नहीं लगता है कि हम कोई अगर आवृत्त सत्ता आवरण लेकर के प्रभु भी हमारे पास आ जाए। क्या पता आपके जीवन में, हमारे जीवन में ईश्वर आया नहीं हो, ऐसा है क्या? नहीं आया है, क्या पता आया हो, आप पहचान नहीं पाए। उस योग्यता को विकास करने के लिए थोड़ा बहुत प्रयत्न, भगवत भक्तजन भावों को शोधन, संशोधन की जरूरत है। हमेशा नेगेटिव विचारों में नहीं रहना है,
किसी के बारे में किसी कोई भी थॉट्स को हमें बिल्कुल नेगेटिव नहीं, पहले हम पॉजिटिव देखें और हो सके तो जितना हो सके हम सकारात्मक भावों को ही मन में प्रतिष्ठित करें। नकारात्मक तो स्वतः संभव है, आ जाता है, परंतु तो उसको हटाना है, साधना है। नहीं तो देखिए, आप पार्क में बैठे हैं, अचानक आपके पास कोई आकर के बैठा और आपकी तरफ दो तीन बार देखा, आपके हाथ में पॉट्स है, हाथ में मोबाइल है, दो तीन बार देखा, आपके मन में कौन सा विचार आया होगा? बहुत सहज है, स्वाभाविक है कि क्या पता कोई नहीं है, 7:30 बज रहा है, ये कहीं मोबाइल लेके तो नहीं भागे, कहीं चोर तो नहीं है। आपके पास में जो बैठे थे, आपके मन में जैसा ही विचार आया वो आप उनसे शेयर की कि देखो कैसे देख रहे हैं, हमको तो ठीक नहीं लग रहा है, चलो चलो यहां से चलते। वो व्यक्ति कह, अरे ऐसा क्यों सोच रहे हो, वो तो अन्य भी हो सकता है, वो कुछ तुमसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। दोनों भावों को देखिए। एक संत जी भिक्षा करने गए और उस घर की बेटी जो है भिक्षा देने पहुंचे और वो युवा संत जो है उस लड़की को बहुत अच्छी तरह से देखने लगे, तो उस लड़की ने क्या सोचा है? अंदर जा करके अपने भाई को, पिता को कहा कि देखो कैसा देखने, इसका दृष्टि जो है बड़ा खराब लगा मुझे। भाई जो है गरम होकर के आए, अपमान किया और पिताजी जो है धक्का दे करके निकाल दिया। संत तो निकल गए और वो ज्यों ही वो निकल गया, कुछ समय पश्चात उस घर में एक अघटन, पिताजी जो है बीमार हो गए। बहुत कोशिश किया परंतु उस अस्वस्थता से स्वस्थ नहीं हो पाए। किसी ने बोला कि कुछ किया तो नहीं, तो उस लड़की के दिमाग में आया कि अरे कल जो है हमने ऐसा किया, अगर शायद उनकी दृष्टि ऐसा नहीं था, मैं कुछ ज्यादा ही बता दिया था। उनके मन में आया और वो भाई को भेजते हैं कि जाओ जाओ। और वो संत जी गांव के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान से केवल प्रार्थना ही कर रहे थे कि मेरी दृष्टि में ऐसा कोई भाव नहीं है। जब वो लड़का को देखा तो संत के मन में आया कि क्यों ये फिर आया है, और उनके उस भाव को पूर्व घटना जो है मन में आया और वो संत के आंखों से आंसू आने लगे। तो वो बालक वो पूछते हैं कि क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं, अगर हमसे कोई अपराध हुआ है तो आप हमें क्षमा कीजिए, मेरे पिताजी की ये अवस्था है, आप आशीर्वाद दीजिए, आप चलिए। संत जी कहने लगे कि देखो मैंने तो देखा केवल कि मैं कब घर छोड़ा, और घर छोड़ते समय आज तुम्हारे बहन को देख करके मुझे मेरी मां की याद आई, और मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा कि मेरी मां भी ऐसी थी, लेकिन तुम लोगों ने गलत अर्थ निकाला, और यही मैं पश्चाताप में भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि अगर मेरी दृष्टि शुद्ध है तो ये शुद्ध दृष्टि उनको क्यों नहीं इफेक्ट किया। मैं मेरे मन में तो ऐसा कोई भी भाव नहीं है। इसलिए भगवत भक्तजन आप किस भाव को रखते हैं वो बहुत मायना करते हैं, जीवन को बहुत अर्थ रखते हैं। और वो शंकराचार्य जी जो है दूर हट जाओ किया और आचार्य के पास आकर के विश्वनाथ खड़े हो गए। और फिर विश्वनाथ उनसे दो प्रश्न पूछते हैं,